Hare Krishna. कल जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव हम सब मनाने जा रहे हैं धारवाड़ में. पहली बार हो रहा है धारवाड़ में, कभी जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं हुआ, तो पहली बार ऐतिहासिक ये घटना है. और आगे चल के आशा करते हैं प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम होता रहेगा. श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल जगन्नाथ पुरी में, परंतु अब शहर के सारे महत्वपूर्ण, दुनिया के सारे महत्वपूर्ण शहरों में मनाया जाता है. और जो इतने महत्वपूर्ण जगह नहीं है उनमें भी मनाया जा रहा है. कई बार ऐसे देखा जाता है कि गांव में भी ऐसे मनाए जा रहे हैं भारत में जगह जगह में. धारवाड़ में पहली बार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है. जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कल बात करेंगे ना, कल सुबह. तो आज मुझसे निवेदन किया गया था कि हम कुछ गुंडीचा मार्जन के बारे में चर्चा करें. श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर
भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद.
हरे कृष्ण. प्रवचन के समय केवल एक बार घंटी, बस फिर उसके बाद आवश्यक नहीं. आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है. और गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ देव, श्री बलभद्रा और श्री सुभद्रा देवी वो 7-8 दिन के लिए लगभग निवास करते हैं. और फिर उल्टा रथ होता है. उल्टा रथ में क्या होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फिर से रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर से निकल के वापस जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं. तो जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं. ऐसे बताया जाता है कि ये शायद कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा कोई धार्मिक उत्सव है जिसमें अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, एक ही दिन पर, एक समय. आप सब में, आप में से कितने भक्त रथ यात्रा में गए हैं, जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में, तो आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी भीड़ वहां पर होती है. तो गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन माना जाता है और जगन्नाथ मंदिर ये द्वारका माना जाता है. तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे जब रथ यात्रा का जो महत्व है या इसकी महिमा है या इसका तात्पर्य है इसकी चर्चा जब करेंगे तब ये आगे चर्चा होगी. कहाँ से आवाज, सड़क से आ रहा है आवाज, सड़क से शायद दरवाजा बंद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं ऐसे खुला रखो। पिछली बार के हिसाब से बात बहुत कम लग रहे हैं। पिछली बार पुराने स्थान पर गए थे, शायद उस समय रविवार था या कुछ, कौन सा दिन था, सेवा में है, कल की रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था काटवा नाम के स्थान में, फिर वो वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु उनकी माता शची देवी के निवेदन पर वृंदावन न जाकर वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी चलते चलते यमुना या बालेश्वर, जहां पे खीर चोरा गोपीनाथ का मंदिर है, वहां से होकर साक्षी गोपाल के मंदिर का दर्शन करते हुए जो कटक के पास में है, फिर वो आखिर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। थोड़े समय के लिए वहां पर रहे और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा में जाना है। तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो चुका था और भक्तों ने एक सहाय की व्यवस्था कर दी, कृष्णदास, और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में निकले। तो महाप्रभु दक्षिण भारत में अनेक तीर्थ स्थानों में गए, लौट के आए और फिर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव में और मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में जितने भी बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, छोटे भी उत्सव होते हैं, उन सब में शामिल होना शुरू कर दिया अपने भक्तों के साथ में। लेकिन भक्त लोग बंगाल से आया करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए पहली बार जगन्नाथपुरी, तो उनके साथ में केवल गिने चुने भक्त थे, परंतु उसके बाद जब महाप्रभु लौट के आए दक्षिण भारत से, तो चातुर्मास के समय बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जगन्नाथपुरी आने लगे। तो चातुर्मास के प्रारंभ में वो आते, सारा चातुर्मास का समय रह के फिर चातुर्मास के अंत में वो वापस चले जाते और थोड़े भक्त जगन्नाथपुरी में ही रह जाते और महाप्रभु का संग करते, उनकी सेवा करते। परंतु उन चार महीनों में जब बंगाल के भी भक्त रहते थे, तो वो बहुत धूमधाम से, बहुत ही भक्ति भाव से सारे भक्त महाप्रभु के संग में उत्सव में शामिल होते थे, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे, संकीर्तन होता था और जगन्नाथ रथ यात्रा को मनाना भी शुरू किया। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के 3 दिन पहले, जब पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने वाले थे जगन्नाथपुरी में, तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि कौन सी लीलाएं हुई। तो रथ यात्रा के 3 दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया, जो कि राजा प्रताप रुद्र के दरबार में पंडित थे, उनके राजगुरु थे या कुलगुरु थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी बुलाया और जो मंदिर के अध्यक्ष थे उनको भी बुलाया और उनसे निवेदन किया कि 3 दिनों में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो मेरी इच्छा है कि गुंडीचा मंदिर का मार्जन बहुत अच्छी तरह से हो, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन ये सब जाएंगे और वहां पे 7-8-9 दिन रहेंगे, तो इसलिए उनके वहां पहुंचने के पहले मंदिर बहुत ही साफ होना चाहिए। इसलिए मैं ये मंदिर को मेरे भक्तों के संग में स्वच्छ करना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं, तो कृपया सारी व्यवस्था कर दीजिए। जो मंदिर के अधिकारी व्यक्ति थे उन्होंने बड़े नम्रता से हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं और हम सब आपके सेवक हैं, तो जो भी आपकी इच्छा है वो तो हम अवश्य पालन करेंगे, फिर भी ये कहना मेरे लिए उचित होगा कि ये जो झाड़ू मारने का काम, सफाई करने का काम आपको शोभा नहीं देता, हम सब ये काम करवा सकते हैं, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है तो फिर आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे, ये आपकी दिव्य लीला है ये मानकर और ये जानकर, तो इसके लिए, इस कार्य के लिए आपको अनेक मटके चाहिए, आपको झाड़ू भी चाहिए। तो फिर तुरंत उन्होंने 100 मटकों की व्यवस्था कर दी और 100 झाड़ू भी वहां पर लाए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनके सारे भक्त वहां इकट्ठे हुए थे, सारे बंगाल से भक्त आए हुए थे, सैकड़ों भक्त थे वहां पे। जब महाराज प्रताप रुद्र ने अपने राजमहल के छत के ऊपर खड़े होकर बड़े दूर से दर्शन किए सारे भक्तों का जो कि संकीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन तब तक हो चुका था, तो उन्होंने राजा प्रताप रुद्र से कहा कि ये है श्री गौरांग महाप्रभु के पार्षद। और ये सैकड़ों भक्त वहां आए तो राजा प्रताप रुद्र ने सारे भक्तों की व्यवस्था, रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की थी। तो अब ये सारे भक्त तैयार हो गए थे महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए। खबर भक्त समाज में फैली कि महाप्रभु गुंडीचा मठ मंदिर की सफाई करना चाहते हैं, तो सारे भक्त बड़े उत्साह से और आतुरता से एकत्र हो गए। और फिर महाप्रभु ने हर एक भक्त के शरीर पे चंदन का लेप लगाया, फूलों की माला पहनाई सबको और कहा कि चलो गुंडीचा मंदिर में हमें सफाई करनी है, भगवान जगन्नाथ वहां अभी थोड़े 2-3 दिनों में वहां पधारने वाले हैं। तो सारे भक्त निकल पड़े वहां पे, महाप्रभु ने हर एक के हाथ में एक झाड़ू पकड़ा दी और फिर कहा कि बहुत अच्छी तरह से सफाई करना। और महाप्रभु ने स्वयं कैसे सफाई करनी चाहिए, मंदिर का मार्जन कैसे करना चाहिए, वो दिखलाया सबको। तो महाप्रभु और सारे भक्त झाड़ू लगा रहे थे मंदिर में, और लगाते लगाते जितने भी कण थे वहां, धूल के कण थे, घास फूस ये वो सब वहां गिरा हुआ रहता था, तो वो सब साफ कर दिए। और जहां सिंहासन था सिंहासन को भी उठाया, सिंहासन को साफ कर दिया, जो कण और कण के अंदर जो स्थान था उसको भी पूरी तरह से झाड़ू मार के साफ कर दिया। सारे भक्त लोग भी कर रहे थे। और फिर जगमोहन को सफाई की। जगमोहन वो स्थान है जहां से दर्शनार्थी खड़े होकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, उस स्थान को जगमोहन कहते हैं। तो जगमोहन की भी सफाई अच्छी तरह से हुई। फिर भोग मंडप एक और एक स्थान है जहां पे भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, और ये बहुत काफी बड़ा स्थान है क्योंकि भगवान जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ पुरी में जितना भी भोजन बनाया जाता है वो सारा का सारा जो है वो अर्पित किया जाता है भगवान को। वैसे साधारण तो अन्य मंदिरों में जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है तो उस समय बड़ी मात्रा में भी बड़े बड़े भोजन बनाए हुआ है, उसमें थोड़ा केवल एक थाली भगवान को चढ़ाई जाती है भोग में, परंतु जगन्नाथपुर में सारा का सारा भोग अर्पण होता है, इसलिए जगह भी काफी चाहिए। तो जिस स्थान में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है उसको भोग मंडप कहते हैं। तो भोग मंडप की भी सफाई बहुत अच्छी तरह से हुई। झाड़ू मार रहे थे महाप्रभु और सारे भक्त, तो गर्भगृह भोग मंडप जग मोहन सब सफाई हो गई। फिर बाहर जितने भी मंदिर के प्रांगण में और छोटे छोटे कमरे थे, मकान थे, वो सब उन्होंने साफ कर दिए झाड़ू मार के। और जो आंगन था, आंगन की भी सफाई हुई। चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रेरणा दी बहुत अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए। उन्होंने कहा कि जितना हो सके आप सफाई कीजिए। और स्वयं महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया कि कैसे सफाई की जानी चाहिए। जितने भी धूल आदि कण थे वो सब उठा के उन्होंने अपने वस्त्र में डालना शुरू कर दिया, और फिर वो डाके लेके बाहर मंदिर के बाहर प्रांगण में जाके उसमें डाल दिया। तो सारे भक्तों ने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। भक्तों ने सारा जो कचरा है वो इकट्ठा किया, बाहर जाके उसे एक जगह डाल दिया। तो जितने भी भक्त थे वो सब एक जगह आके अपना कचरा रख रहे थे, और महाप्रभु जहां अपना जो साफ किया हुआ कचरा था वो लाके दूसरी जगह डाल रहे थे। तो दोनों के प्राय पहाड़ की तरह बन गए। तो सारे भक्तों ने इकट्ठा किया हुआ कचरा, साफ किया हुआ कचरा एक जगह था, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने साफ किया हुआ जो कचरा गिट्टा था वो एक दूसरी तरह था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बनाया हुआ जो पहाड़ था वो बहुत बड़ा था। इसका मतलब है कि अकेले चैतन्य महाप्रभु ने 100 भक्तों से अधिक सफाई की सारे मंदिर की। और इस तरह से सारा मंदिर का प्रांगण में जितने भी और कमरे मकान आदि थे वो सारे के सारे साफ हो गए। फिर भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा दूसरी बार हम करेंगे। तो दूसरी बार उन्होंने सबने सारे भक्तों में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बहुत ही उत्साह से और बहुत ही प्रेम से भक्तों ने मंदिर की सफाई करना शुरू कर दिया। और इस तरह से बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ने लगा सारा मंदिर। उधर सारे भक्त राह देख रहे थे कि पानी से सफाई करने का कार्य कब शुरू होगा। फिर महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि अब पानी से सफाई शुरू की जाए। तो वहां गुंडीचा मंदिर के पास में सरोवर है, तो उस सरोवर में से पानी लेके यहाँ मंदिर में लाना था। तो कई भक्त सरोवर के तट पे खड़े थे और वो लोग पानी भर रहे थे। थोड़े लोग मटकों को वहां से लेकर दूसरे को दे रहे थे, दूसरा तीसरे को दे रहा था। इस तरह से वो पहुंच रहा था मंदिर में। फिर मंदिर के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि पानी मटकों के द्वारा ऊपर छत पे फेंका जाए ताकि छत की सफाई पहली हो। यदि जमीन की सफाई या कमरों की सफाई पहले कर दे उसके बाद में छत की कर दे तो फिर क्या होगा? तो जो छत की गंदगी है वो फिर से साफ जमीन पे दीवारों पे आ जाएगी। इसलिए पहले सफाई करते समय छत की सफाई करनी चाहिए। तो छत की सफाई होने लगी। इतने सारे भक्त थे और इतनी भीड़ हो गई थी वहां सरोवर के तट पे। लोग पानी भर रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे, आते जाते कभी लोग टकरा रहे थे तो मटके ठोकर खाके टूट रहे थे। वैसे के मटके थे सब। फिर नए मटके लाए गए। इस तरह से सैकड़ों नए मटके लाए गए। सारे भक्त लोग पानी भर के वहां मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब किसी भक्त को पानी का मटका दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना होता था तो वो कृष्ण कृष्ण कहता था, और कोई किसी भक्त को पानी का मटका चाहिए होता था तो वो भी कृष्ण कृष्ण कहता था। इस तरह से सारे स्थान में, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, सरोवर के तट पे, बीच के स्थानों में, सब जगह कृष्ण 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 से जोर जोर से सारे भक्त बोल रहे थे। जब महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे पहले, उस समय वो भी कृष्ण नाम ले रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, और सारे भक्त जो है मिलकर वो भी संकीर्तन करते हुए झाड़ू लगा रहे थे। तो सेवा कैसे की जानी चाहिए ये महाप्रभु स्वयं सिखला रहे थे। कोई प्रजल्प नहीं हो रहा था। हम लोग भी कितने सारे सेवाएं करते हैं, चाहे वो रसोई घर में रसोई बनाना हो, भोग बनाना हो, चाहे मंदिर का मार्जन करना हो। तो कभी ऐसे देखा जाता है भक्त लोग मिलते हैं तो रसोई घर में भी करते करते प्रजल्प करते रहते हैं, नहीं? बात करते रहते हैं, फूलों की माला बना रहे हैं, तो कितनी सारी बातें होती हैं। परंतु भगवान की सेवा से जब की जाती है तो प्रजल्प नहीं होना चाहिए, या वहां की बातें नहीं होनी चाहिए, या तो कृष्ण कथा होनी चाहिए या कृष्ण नाम का उच्चारण होना चाहिए। और कितने उत्साह से, कितनी आतुरता से, कितने प्रेम से सेवा करनी चाहिए, कितनी जिम्मेदारी से करनी चाहिए, कितनी बारीकी से हर चीज को देखना चाहिए कि ये सेवा ठीक से हुआ या नहीं हुआ, ये भी महाप्रभु ने सिखलाया। क्योंकि छोटे छोटे कर्म जब हुआ करते थे उनको भी महाप्रभु देखते थे, अरे ये नहीं उठाया तुमने, तुमने वो नहीं उठाया, देखो वहां भी थोड़ा कचरा है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से झाड़ू मारते हैं, पटपट पटपट, दो मिनट में चलो हाजिरी लगा दी कि सफाई हो गई मंदिर में, ऐसे नहीं। क्योंकि मंदिर है तो मंदिर की सफाई कितने ध्यान से करना चाहिए, कितने प्रेम से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो इतनी बारीकी से महाप्रभु ने किया, हर कोने कोने में देखते थे, कहीं भी कोई धूल की कण भी नहीं मिले किसी को। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, परंतु हाँ समय का ख्याल भी रखना चाहिए। अभी हम रसोई बनाने जा रहे हैं, भोग का समय हो रहा है, भोग का समय यदि 12 बजे है तो 12:15 बजे तक सब तैयार होना चाहिए, सब थैली में भगवान के रखने चाहिए थाली में, और इधर ये इतने बारीकी से काट रहे हैं उसको, कला का कार बना के छोटे छोटे चीज में 4 घंटे लग जाएंगे उसमें। तो समय का भी ख्याल रखना चाहिए, परंतु बड़े उत्साह और प्रेम से, जिम्मेदारी से करना चाहिए। कार्य संपूर्ण होना चाहिए, आधा छोड़ना नहीं चाहिए। सेवा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। सेवा पूर्ण होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, भक्ति भाव से किया जाना चाहिए, जिम्मेदारी से की जानी चाहिए, और इसमें प्रजल्प नहीं होना चाहिए, कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, कोई बहस नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए कि ये भी करो नहीं, ये करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। तो महाप्रभु ने जैसे आदेश दिया उस सारे भक्त लोग वैसे ही कर रहे थे। फिर जब पानी से मार्जन करना शुरू हो गया तो उस समय भी कृष्ण कृष्ण कह के एक दूसरे को मटके दे रहे थे, और ऐसे कतार बनाई गई थी, तो सारे कोई भक्त लोग मटके लेकर जा रहे थे तो कोई एक से दूसरे के हाथ में दे जा रहे थे। और फिर पानी छत के ऊपर फेंका तो छत पूरा साफ हो गया, इतना सारा पानी ऊपर डाला छत के ऊपर, और छत के ऊपर जितनी भी धूल थी वो भी सब दीवारों से होकर नीचे जमीन पर आके गिर गई। फिर छत को साफ करने के बाद दीवारों की सफाई हो गई, सारा पानी दीवारों पर डाल रहे थे, पत्थरों का है, पुराने जमाने मंदिर पत्थरों से बने जाते थे, आजकल सब डर रहता है पेंट निकल जाएगा, ये रंग निकल जाएगा, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन पुराने जमाने मंदिर में सफाई बहुत अच्छी तरह से और आसानी से हो सकती थी। तो सारे दीवारों पे भी उन्होंने पानी डाला और फिर वो सारा जमीन से वो बहते हुए जा रहा था, और मंदिर के जमीन में एक कोने में ऐसे छेद भी था जिसमें से पानी बाहर जा रहा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे लग रहा था कि एक नदी बह रही है, और नदी वो पानी बाहर जा रहा था और फिर जमीन को साफ करना प्रारंभ किया गया। तो सारे भक्त ऐसे जमीन पे पानी डाल रहे थे, तो कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु को मटका देते पानी का, तो कोई भक्त उनके हाथ धो देते, तो कोई उनके चरण कमरों में पानी डाल देते, और कभी कभी कोई कोई भक्त वो जल लेके बांध कर उसका पान कर लेता, चरणामृत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया हुआ जल। एक बार एक ऐसे करते करते एक बंगाल से एक भक्त आए थे, उन्होंने भी ऐसे जानबूझ कर डाला और फिर उस जल का पान किया। तो महाप्रभु ने अपने हृदय में उस भक्त के भाव को पसंद किया, फिर भी वो बताना चाहते थे कि ये उचित नहीं है। तो बाह्य दृष्टि से उन्होंने थोड़े नापसंदी का या क्रोध का प्रदर्शन किया और स्वरूप दामोदर से कहा कि देखो तुम्हारा बंगाली वैष्णव क्या करता है और मुझे कितने अपराध में उसने जोड़ दिया है। मंदिर के अंदर उसने मेरे पैर धो लिए, पहला अपराध किया। वैसे किसी दूसरे के पैर मंदिर के अंदर नहीं धोने चाहिए ना, केवल भगवान का अभिषेक होना चाहिए। तो इसने ये भक्त ने मंदिर के अंदर मेरे पैर धो दिए और दूसरा इतना ही नहीं फिर वो पानी पी भी लिया। अब इसने ऐसे कार्य करने के कारण, ऐसे भगवान के मंदिर में ऐसे अपराध करने के कारण अब मेरी क्या गति होगी मुझे नहीं मालूम। तो स्वरूप दामोदर ने फिर उस बंगाली वैष्णव को ऐसे पकड़ा बाहर कर दिया। फिर स्वरूप दामोदर ने आके बाहरे तो ऐसे कर दिया, गले से ऐसे पकड़ा, अरे क्या करते चलो जा बाहर। लेकिन स्वरूप दामोदर ने बाद में आके महाप्रभु से कहा आप क्षमा कर दीजिए, इस भक्त को आप क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानता है कि मर्यादा क्या है क्या नहीं है। वैसे स्वरूप दामोदर भी जानते थे कि महाप्रभु अंदर से खुश प्रसन्न थे उसकी आतुरता को देखकर, और महाप्रभु ने वास्तव में आशीर्वाद और कृपा उस भक्त को प्रदान की थी। फिर भी एक मर्यादा का पालन सभी को करना चाहिए, इसलिए दोनों महाप्रभु ने और स्वरूप दामोदर ने अपना बाहर से एक रोष एक क्रोध प्रकट किया ताकि मंदिर में और ऐसे कोई नहीं करे। तो मंदिर के अंदर कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारा बोलचाल होना चाहिए, ये बहुत सोचने की बात है, जानने की बात है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारे ऐसे साधन भक्ति के अंगों के चर्चा के अंतर्गत में बताया है कि मंदिर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप में से कोई बता सकते हैं कौन सी चीजें भगवान के मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए?
मंदिर में किसी पालकी में या जो भी आजकल वाहन लेके नहीं आना चाहिए,
पालकी के ऊपर सवार होकर मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पालकी में कौन बैठता है? कोई राजा महाराजा बड़ा आदमी बैठता है ना, तो पालकी में बैठे हुए वो प्रभुत्व की भावना रहती है कि मैं राजा हूं, मैं कोई बड़ा आदमी हूं। तो जब भगवान के सामने आते हैं ये भौतिक दुनिया के बड़प्पन को छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। इसलिए जब भगवान के मंदिर में आते हैं हाथ जोड़ के नम्रता से बड़े प्रेम भाव से आना चाहिए। इसलिए पालकी से दूर ही उतरना चाहिए, पालकी में आना भी है तो। और उसी तरह से आजकल की पालकी है गाड़ी, हालांकि गाड़ी तो प्राय सभी के पास है, आजकल अनेक लोगों के पास है, तो गाड़ी में बैठते हुए भी सीधे मंदिर के द्वार के सामने खड़े होकर उतरना नहीं चाहिए। जहां के भगवान देख सके तो ऐसे स्थान से गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए, कहीं थोड़ी दूरी पर उतरना चाहिए, फिर पैदल वहां से आना चाहिए। ठीक है, ये एक बात है कि पालकी से उतरना भगवान के सामने मंदिर में नहीं चाहिए। और कौन से नियम बताए गए हैं, एक एक करके आप सब बताते जाइए, कौन से अलग अलग भक्त बताएंगे, एक 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 अलग अलग।
भगवान के अलावा किसी और का प्रशंसा नहीं करना
चाहिए। हाँ, भगवान के अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि हम भागवत पढ़ रहे हैं और भागवत में किसी महान भक्त की प्रशंसा हो रही है मंदिर में, तो फिर वो कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शास्त्र है, भागवत है। और किसी और वैष्णव की प्रशंसा करनी है, उनको हमारा आभार व्यक्त करना है, तो ऐसे कर सकते हैं संक्षेप में, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए और किसी की नहीं। और कौन से नियम? एक हाथ ऊपर कीजिए, फिर बताइए। भगवान के श्री विग्रह के सामने वैष्णवों को दंडवत नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी सही बात है। और ये प्रश्न कई भक्त करते हैं कभी कभी। यदि कोई बहुत ही वरिष्ठ भक्त आते हैं, कोई गुरुजन आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो ऐसे नियम है कि उनको देखते ही तुरंत प्रणाम करना चाहिए। तो एक जगह शास्त्र में ऐसे बताया जाता है कि उनको पहली बार जब देखते हैं तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी बताई गई है कि भगवान के मंदिर में प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी दूसरे को। तो पहली बार मंदिर के अंदर ऐसे व्यक्ति का दर्शन हम करेंगे तो क्या करना चाहिए फिर? एक नियम ऐसे है, दूसरा नियम बिल्कुल उल्टा है इसका, तो क्या करना चाहिए फिर? धर्म संकट क्या करेंगे? आपकी राय क्या है? सब लोग करें तो हमें भी करना चाहिए। वैसे बहुत ही विशेष कोई व्यक्ति आए, अवश्य कर भी सकते हैं, परंतु प्रथा ये है, मैं प्रयास करना चाहिए कि हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, मन में प्रणाम करें और ऐसे करें, लेकिन भगवान के विग्रह के सामने ऐसे नहीं करें तो ही अच्छा है। और कौन से नियम? हाथ ऊपर कीजिए। भगवान को हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, इसलिए व्यासाश्रम को भी ऐसे रखना चाहिए ताकि थोड़ा ये हो, सीधा पीठ यहाँ वक्ता करना हो, तो इसलिए पहली बार देख रहे थे, पीठ थोड़ा अलग से बैठे, ठीक है। भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए बैठते समय। और यदि रूप गोस्वामी आज होते और आज वो इस ग्रंथ को लिखते, ये भी कहते कि मोबाइल फोन मंदिर में बजना नहीं चाहिए और मोबाइल फोन पे बात नहीं करना चाहिए और व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए और कोई एसएमएस वगैरह भी नहीं करना चाहिए मंदिर में बैठ के। अवश्य वो ऐसे बोल देते। अच्छा, और कौन से नियम है? किरीट डाल के नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए?
भगवान एक ही डाल सकते हैं,
भगवान ही अकेले हैं, राजा एक ही भगवान है। वो बाहर के राजा बड़े मुकुट डाल के बैठे हो बाहर, लेकिन मंदिर में आते समय साधारण व्यक्ति की तरह आना चाहिए। अच्छा, और कौन से नियम?
मंदिर में प्रजल्प नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है।
एक 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 मंदिर में क्रोध नहीं करना है, मंदिर में किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके खूब गुस्सा कर सकते हो, ये मतलब नहीं है। बाहर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके अंदर इसको स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए मोबाइल फोन। ये सब नियम होना चाहिए। जब आप आएंगे अंदर मंदिर, आपका देख लीजिए फोन बाहर निकालिए और देखिए कि नहीं बजे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो मंदिर के अंदर क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। और
भगवान के सामने प्रसाद नहीं,
भगवान के सामने प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, एक बार हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी में ही गए थे, गुंडीचा मंदिर में गए थे, फिर वहां पास में एक मठ है वहां पे गए थे। तो वहां एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव रहते थे, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य थे। तो हम उनके मठ में गए, उनके मंदिर में गए, दर्शन किए उनके मंदिर के विग्रहों का, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। सब लोग, हम लोग जगमोहन में बैठे थे जहां से दर्शन हो सके, तो उन्होंने सबको महाप्रसाद खिलाया। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज दर्शन खुले हैं, भगवान के सामने कैसे ले सकते हैं। तो उनका भाव अलग था, उन्होंने कहा अरे भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं देख के सारे भक्तों के, मेरे भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं, चलो नहीं दे दो दे दो। तो उनका भाव था, उनका भाव ऐसे था, क्योंकि वो बहुत ऊंचे भक्त थे, उनका नकल हम नहीं कर सकते। लेकिन सर्वसाधारण नियम ऐसे होना चाहिए, और कभी कभी जगह की कमी के कारण मंदिरों में ही प्रसाद का वितरण होता है, तो उससे ना दर्शन बंद किया जाता है। ठीक है, मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और
पांव हमेशा बंद करके रखना,
पांव बंद करके अर्थात भगवान को पांव दिखाना नहीं चाहिए। हालांकि आजकल क्योंकि जब हम कुर्सी में बैठते हैं, आजकल तो दिखाई पड़ता है, अभी कैसे करेंगे, कुर्सी में तो ऐसे नहीं बैठ सकते, परंतु ये ख्याल रखना चाहिए, जैसे ऐसे बैठे हैं हम लोग तो पैरों को ढक देना चाहिए कपड़े से, ताकि भगवान को हमारे पैर दिखे नहीं, ऐसे। अच्छी बात है, और कोई बातें एक एक करके सब बताइए।
Want to not speak loudly.
हाँ, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, केवल कीर्तन ऊंचे स्वर में हो सकता है, परंतु बाकी ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं एक भक्त को दूसरे भक्त को बुला रहा है जो मंदिर के दूसरे कोने में, मायापुर में जो बाहर के लोग आते हैं ना, आसपास के गांव के लोग आते हैं दर्शन करने आते हैं गांव वाले, उनको ये नियम नियम सब नहीं पता है। और वैसे ही आपको पता है भारत में हमारी एक बीमारी है कि हम बड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं, नहीं? कभी आराम से बात ही नहीं करते, जोर जोर से ही बात होती है। आप सामने वाला आदमी कितना भी नजदीक क्यों ना बैठा हो, जोर से ही बात करते हैं। तो वहां भी जोर से एक दूसरे को बुला रहे हैं, जोर से एक कोने से दूसरे कोने में बुलाते हैं। तो ऊंचे आवाज में, ऊंचे स्वर में मंदिर के अंदर नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, और कौन सा लिया?
स्वच्छ कपड़े और गंदे से कपड़े पहन के।
हाँ, स्वच्छ कपड़े पहन के मंदिर में आना चाहिए। मंदिर में आते समय गंदे कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। इसलिए अधिकतर हो सके तो आप धोती कुर्ता में आए तो सबसे अच्छा है, धुला हुआ धुले हुए कपड़े। पैंट शर्ट में क्या होता है, ठीक है, कभी कभी अपनी नौकरी से व्यवसाय से आ रहे हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं। और सभी के पास आजकल धोती कुर्ता होता भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि धोती कुर्ता ही पहन के आइए, तो आधे लोग नहीं आएंगे मंदिर में, तो ठीक है भाई आ जाओ पैंट शर्ट पहन के आ जाओ। लेकिन जो हमेशा के भक्त, हमेशा आने वाले भक्त हैं, उनको पता होना चाहिए कि पैंट शर्ट आदि स्वच्छ क्यों नहीं माने जाते, क्यों नहीं माने जाते। आप में से कितने भक्त पैंट पहनते हैं आपके नौकरी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए पहनते हैं ना, तो एक पैंट का इस्तेमाल कितने समय करते हैं, कितनी बार करते हैं धोने के पहले,
कम से कम
चार बार। तो फिर साफ है, साफ नहीं है ना। तो ये इसके पीछे बहुत सारे कारण है, ये धोती क्या आसानी से साफ हो सकता है, तो अच्छे साफ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन से बातें हैं, नियम जो मंदिर में पालन करने चाहिए? हाथ ऊपर कर ली, कौन?
सोना नहीं चाहिए,
बहुत महत्वपूर्ण नियम है। मंदिर में आके सोना नहीं चाहिए। लेकिन प्रवचन के समय तो बहुत सारे लोग सोते हैं, तो क्या करें, हम उनको बताएं कि आप बताइए कैसे करना चाहिए। ये अक्सर हम सुनाते हैं, हम कहते हैं, बताते हैं भक्तों को कि देखिए इस प्रवचन में कोई सो भी जाए तो आने दो उसे, कम से कम कम से कम आत्मा तो सुन रही है उस प्रवचन को, तो उसका शरीर तो निद्रा अवस्था में है लेकिन शुद्धिकरण तो हो रहा है, और सोते समय भी देखो कितना खुश दिखता है क्योंकि भक्त है ऐसे वातावरण में रहके। आप बाहर जाके बस ट्रेन में देखिए जब सो रहे होते हैं कितना उदास चेहरा होता है, लेकिन मंदिर में जब के समय तो सबसे ज्यादा खुश जब सोते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मंदिर में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, और कौन से नियम हाथ ऊपर कीजिए। प्रजल्प नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा। प्रजल्प अर्थात जो कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण नाम नहीं है, जो कृष्ण सेवा से संबंधित नहीं है, वो बातें नहीं करनी चाहिए। नकार नहीं करना चाहिए, हाँ, इसलिए भोजन के बाद तुरंत नहीं आना चाहिए। और
झूठे मुंह से नहीं आना,
हाँ,
झूठे मुंह
और हाथ से नहीं आना चाहिए, तो हाथ धो के स्वच्छ अवस्था में आना चाहिए।
हम बाहर से कुछ भी होने दो, मंदिर के अंदर आने के बाद सिर्फ दास समझना चाहिए।
बाहर जब जो भी हो मंदिर में आते हैं, दास बन के इस भावना से आना चाहिए। ठीक है, और कौन सी चीजें हैं। तो वायु त्याग नहीं करना चाहिए मंदिर में, और पैर धो के आना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी हमारे मंदिरों में व्यवस्था ऐसे बहुत कम होती है पैर धोने के लिए। पुराने मंदिरों में आप देखेंगे तो पैर धोने की व्यवस्था हमेशा होती है, यहाँ पे नहीं होती है। फिर भी कोशिश करें तो जहाँ संभव हो साफ के आए हम। ठीक है, और कौन सी बातें हैं। जमाई कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
जमाई
नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। और
झूठ नहीं बोलना चाहिए
जो झूठ बोलना है बाहर जाके बोलना, बाहर भी नहीं बोलना चाहिए, अंदर भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खास करके मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने हम सबको सिखलाया है कि कैसे हमें रहना चाहिए। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा था, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, ये सब बड़े आनंद से कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि कितना बोझ है, ये सब नहीं सोचा उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने सारे मंदिर को साफ कर दिया, और महाप्रभु सबको देखते और यदि देखते कि अरे तुमने ठीक से नहीं किया तो भक्त शर्मिंदा हो जाता था, और भी बड़े उत्साह से फिर वो सेवा करना शुरू करता था। और यदि कोई भक्त बहुत अच्छी तरह से सफाई कर रहा होता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, तो वो भी प्रेरित हो जाता, वो भी और उत्साह से सेवा करता। इस तरह से महाप्रभु ने सबके साथ इतनी अच्छी तरह से सफाई कर दी, सारा मार्जन कर दिया मंदिर का, कि वो मंदिर के अंदर के स्थान जितने भी हैं और बाहर के सब चमकने लगे, जैसे भगवान का मन है, ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं। और ये सारा साफ करने के बाद सारे भक्तों को लगा कि हमारा मन भी, हमारे हृदय भी उतना ही साफ हो गया है जितना कि ये मंदिर। और वास्तव में यही बात है, जब हम मंदिर की सफाई करते हैं तो केवल मंदिर की सफाई नहीं करते हैं, साथ साथ में हमारे हृदय की सफाई भी करते हैं। तो हृदय का मार्जन होता है। तो भक्ति के जितने भी अंग हैं साधन भक्ति के, वो सब शुद्धिकरण के कार्य हैं। चाहे वो हरि नाम जप हो, चाहे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हो, आरती हो, प्रसाद का सेवन हो, अध्ययन हो, जब हम इन कार्य भक्ति इन कार्यों को भक्ति भाव से करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो उस समय हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। हमारे चित्त में बहुत सारे अनर्थ है, गंदगी है, मैल भरा हुआ है, कितने लाखों लाखों जन्मों से इकट्ठे हुए जितने भी बुरे विचार हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, वो सब हमारे हृदय में हैं। तो शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे और बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन नवयुवक और नवयुवतियां मंदिर से जुड़े, वो भक्त बने और उन्होंने चार नियमों का पालन करना शुरू किया। ये चार नियमों का पालन उन देशों में तो कभी किसी ने सुना भी नहीं था। उनकी जीवन शैली इस प्रकार से है कि सभी को ये सब करना चाहिए, इसके बिना जीवन का क्या मूल्य है, क्या रस है इसमें, नहीं है। तो जब इन्होंने इस सब पालन करना शुरू किया और कई लोगों ने घर छोड़ दिया, कोई ब्रह्मचारी बन गए, कोई मंदिर में आके रहने लगे, तो उनके रिश्तेदार थे, माता पिता थे, वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने आगे एक आंदोलन भी शुरू किया और अदालत में भी उन्होंने ये किया कि ये लोग, ये स्वामी जी जो है, ये भारत से आए हैं, ये सबका ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ब्रेन वॉशिंग इसका मतलब है कि उनको मन को कुछ परिवर्तित कर देते हैं, धोखे में डालते हैं उनको। ये बड़े मासूम हैं बच्चे, तो उनके दिमाग को ऐसे परिवर्तित करते हैं कि इस तरह के कार्यों में भ्रमित करके उनको यहाँ ले आते हैं। तो जब ये बात प्रभुपाद तक पहुंची कि ये शब्द अंग्रेजी में था ब्रेन वॉश, तो प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल सही है, ब्रेन को वॉश करने की जरूरत बहुत है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है इतने सारे गंदे विचारों से भरा हुआ है अनादि काल से। तो ये कृष्ण भावनामृत के रास्ते से ही हमारा जो दिमाग है, हमारा हृदय है, मन है, ये चित्त है, ये सब साफ हो सकता है। क्या है इतना भी बोल रहे हैं कि फोन में नहीं देखना है और एसएमएस नहीं भेजना है, पिछले 15 मिनट से वही चल रहा है। One of the things we should not do in the class. तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सारा चित्त का मार्जन करना है ये। तो उसी तरह से सारे भक्तों ने जब मंदिर की सेवा की, मंदिर का मार्जन किया उन्होंने, तो उनको ऐसे लगा कि जिस तरह से ये मंदिर चमक रहा है स्वच्छ होकर पानी से वगैरह, तो उसी तरह से हमारा मन भी हो गया है। उनको इसका साक्षात अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमोचयम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये राज धर्म है, ये राज योग है, राज विद्या है, और इसका पालन करने से सुसुखम कर्तुम बड़े सुख का अनुभव होने लगता है, और प्रत्यक्ष अवगमन धर्म इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय और भी साफ होने लगता है, और इसका अनुभव हमें होने लगता है। कैसे अनुभव होता है? हमारे हृदय के जितने भी बुरे विचार हैं, हमारे जो बुरी वृत्तियां हैं, वो सब निकल जाते हैं हृदय से, एक साथ में होने लगते हैं ये सब, और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, संसार के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, अपने आप ही भक्ति और वैराग्य दोनों ही साथ साथ हृदय में बढ़ने लगती है। हृदय का शुद्धिकरण का अनुभव प्रत्यक्ष भक्त को होने लगता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में बताया है, भक्ति ही परेशान भवो व्यक्ति अन्यत्र चय शत्रु का एक काल है। तो भक्ति ही भगवान के प्रति भक्ति की भावना, दूसरा परम ईश अनुभव है, भगवान परम सत्य का अनुभव हमारे जीवन में, और साथ साथ अन्यत्र विरक्ति, भगवान से अन्य जितने भी चीजें हैं उन सबसे विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो भक्ति के जितने भी अंग हैं, नव विधा भक्ति के अंतर्गत जो भी आते हैं कार्य, उनको यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और अनुभव साक्षात होगा। परंतु जिस तरह से महाप्रभु और उनके भक्तों ने सेवा की, उसी तरह से हमें भी करना चाहिए, तब इसका पूरा लाभ मिल जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी समझाया है कि ये गुंडीचा मार्जन लीला का तात्पर्य क्या है, क्या इसे सबक सीख सकते हैं। बहुत से सबक सीख सकते हैं, उनमें से थोड़ी चीजों की चर्चा तो हमने कर ही ली है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में आके भगवान विराजमान रहें, तो हृदय को हमें एक ऐसा पवित्र स्थान बनाना है जिसमें भगवान रहने के लिए आए, तैयार हो जाए, भगवान पसंद करें कि हाँ इस स्थान में मैं रहना चाहता हूं। जैसे देखिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाएंगे जो आपको पसंद नहीं करता है? और जब आप उनके घर में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप घर में आए वो किसी दूसरे कार्य में लग गया है, कैसे लगेगा? आप जाएंगे उस स्थान में? नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान कभी भी अभक्त के हृदय में प्रकट नहीं होते हैं। हालांकि भगवान हरेक प्राणी के हृदय में विराजमान है, परंतु उस व्यक्ति को भगवान के प्राकृतिक का साक्षात्कार नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को प्रकट नहीं कराते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसको साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान मेरे हृदय में है, क्योंकि भक्त का हृदय पवित्र होता है और गंदगी नहीं होती है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो गंदगी है, ये सब नहीं होती है ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में। इसलिए भगवान वहां ऐसे निर्मल स्थान में रहना पसंद करते हैं। हम किसी गंदे स्थान में भी जाना पसंद नहीं करते ना। जैसे समझ लीजिए, आप कहीं एक स्थान में गए हैं, आप रेल अड्डे पे गए हैं या बस अड्डे में गए हैं, आपको कहीं जाना है, आप बैठने का स्थान ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ बहुत कचरा पड़ा है, यहाँ साफ स्थान है, तो आप कौन से स्थान में जाएंगे? साफ स्थान में जाएंगे, गंदे स्थान में जाके नहीं बैठेंगे। तो उसी तरह से जब हमारे हृदय गंदा होता है, अनर्थों से भरा हुआ होता है, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे वहां पे? तो हम सब साधक हैं। साधक कौन होते हैं? जो अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए होते हैं। सिद्ध अर्थात परिपूर्ण, परफेक्ट। जो साधन भक्ति करते हैं उनको साधक कहते हैं। तो साधक जो होता है उसका हृदय पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं हुआ होता है, शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका होता है, क्योंकि वो अपनी साधना करता है। परंतु अभी तक परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हो चुका है, इसलिए हालांकि शुद्धकरण का कार्य शुरू हुआ है परंतु वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसके हृदय में अभी तक थोड़े बहुत गंदगी इधर उधर बची हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में कभी कभी ऐसे वैसे कुछ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है, क्योंकि पूरी तरह से हृदय शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक। तो उपाय क्या है? उपाय है कि पूरी तरह से हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं, तो हृदय को एक ऐसे उपयुक्त स्थान बनाना चाहिए उनके आगमन के लिए। हमारे घर में यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं तो घर को सफाई, घर की सफाई करेंगे कि नहीं? भले आप रोज घर की सफाई करते हैं, रोज घर की में झाड़ू पोछा होता है ना? होता है। फिर भी आपके घर में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं तो उस समय आने के पहले खास सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं। तो उसी तरह से जब हम चाहते हैं कि भगवान को हमारे हृदय में प्रकट कराना है तो हमारे हृदय को साफ करना चाहिए। कैसे साफ करना है? भगवान की सेवा करके। तो ऐसे भगवान की सेवा करके हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर भगवान बड़े आनंद से उस हृदय में आके निवास करना शुरू करते हैं। हालांकि वो है लेकिन अभी प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे सफाई जब हो गई फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर नृत्य करना और कीर्तन करना शुरू कर दिया। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि कोई उन्मत्त सिंह वहां पे गर्जना कर रहे हैं और स्वरूप दामोदर वो बहुत अच्छा कीर्तन करते थे और वो भी ऊंचे स्वर में। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा कि आप कीर्तन करो, तो स्वयं महाप्रभु नृत्य करने लगे और साथ साथ कीर्तन भी करने लगे। तो सारे भक्त लोग इतने उत्साह से कीर्तन कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि ये ध्वनि सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य से ऐसे लग रहा था कि शायद सारी पृथ्वी हिल रही है। फिर बहुत लंबे समय तक कीर्तन करने के बाद फिर सब कीर्तन वगैरह सब स्नान वगैरह सब कर लिया और स्नान करने के बाद फिर महाप्रभु एक भगवान नरसिंह देव का मंदिर का दर्शन किया। जब कुंडलचंद मंदिर का मार्जन हुआ उसके बाद महाप्रभु ने भक्तों को साथ में ले जाके भगवान नरसिंह देव के मंदिर की भी सफाई कर दी। आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हुए हैं आपने देखा होगा कि कुंडलचंद मंदिर के बिल्कुल पास में भगवान नरसिंह देव मंदिर का भी एक मंदिर है। तो वहां भी महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में साफ कर दी। फिर स्नान के बाद भगवान नरसिंह देव का दर्शन किया और फिर एक स्थान में बगीचे में उद्यान में जाके बैठे अपने भक्तों के साथ में। उधर काशी मिश्र वाणी नाथ इत्यादि इन्होंने भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की व्यवस्था की थी। प्राय 500 लोगों के लिए जितनी भी महाप्रसाद चाहिए उतना वो लेकर आए थे। तो महाप्रभु ने सारे भक्तों को बिठाया, स्वयं भी बैठे और साथ भक्त प्रसाद का वितरण करना शुरू कर दिया। और उन्होंने महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि मुझे केवल सादा प्रसाद दो, थोड़े उबले हुए जो सब्जियां हैं वो मुझे दे दो, ये सब अच्छे अच्छे चीजें हैं ना, खीर है, ये रसमलाई है, ये वो सब भक्तों को दे दो। तो महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति की पसंद क्या है वो जानते थे। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि आप हाँ, उनको आप ये खिलाओ जरा, उनको वो ये पसंद है, उनको ये खिलाओ। इस तरह से सारे भक्त जाके सारे भक्त अन्य भक्तों को बांट रहे थे और बड़े पेट भर के बड़े आनंद से सारे भक्त प्रसाद ले रहे थे। और बीच बीच में कोई हरि ध्वनि, हरि नाम की ध्वनि गूंजती थी, कोई हरि बोल कहता था, कोई हरि हरि कहता था, कोई कृष्ण कृष्ण कहते थे। फिर सभी लोग प्रसाद के बीच में कृष्ण कृष्ण कहते थे, फिर से प्रसाद देना शुरू। फिर और कोई बीच में अचानक कुछ हरी हरी कह देता, सभी लोग हरी हरी बोलते, फिर से प्रसाद लेना शुरू करते। इस तरह से प्रसाद का सेवन चल रहा था। फिर जगदानंद पंडित और स्वरूप दामोदर ने आके महाप्रभु के थाली में जबरदस्ती डाल दिया प्रसाद मीठा। अब ले लो, देखो जगत जगन्नाथ ने कैसे स्वीकार किया है, इसे कैसे चखा है, आप भी देख लो। तो जगदानंद पंडित से महाप्रभु डरते थे, क्योंकि वो उनकी सेवा नहीं स्वीकार की तो वो जाके उपवास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, बाबा ये जो बोल रहे मानेंगे नहीं तो सारा दिन कुछ खाएंगे नहीं, समस्या है। तो उन्होंने जगदानंद पंडित को दिया हुआ प्रसाद का पान कर लिया, सेवन कर लिया। और स्वरूप दामोदर ने जो भी दिया था वो भी बड़े इतने प्रेम से अर्पण किया, तो उन्होंने उसे भी स्वीकार कर लिया और उनसे कहा, देखो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उन्होंने खूब खिलाया महाप्रसाद जगन्नाथ का, और वो बड़े आनंद से खाने लगे। और गोपीनाथ आचार्य कहने लगे कि देखो कितना आनंद ले रहे हैं ये जगन्नाथ का महाप्रसाद का सेवन करते करते। तो स्वरूप तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं तो पहले एक मायावादी था, एक कौवे के समान था, और केवल महाप्रभु की कृपा है कि आज मैं गरुड़ के समान, एक कौवा गरुड़ के समान बन गया, क्योंकि गरुड़ भगवान के भक्त है। तो एक कौवा आज गरुड़ बन गया है महाप्रभु की कृपा से। मैं केवल एक तार्किक था, तार्किक अर्थात जो केवल तर्क करता है, लेकिन आज तर्क आदि से मैं दूर हो गया हूं। अभी केवल भगवान की सेवा के अमृत का पान करता हूं, इसलिए दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हूं। उधर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु पास पास में बैठे थे, तो आपस में उनका मजाक शुरू हो गया। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, उनका मुझे पता नहीं कि मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूं, ये चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, और सन्यासी लोग यहां वहां जाके खाते हैं वो सब उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूं और मैं अब इस व्यक्ति के साथ में बैठा हूं, इसका परिवार क्या है, जन्म स्थान क्या है, इसका वर्ण क्या है, आश्रम कुछ पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास में बैठ के मैं खा रहा हूं, मैं जाने मेरी गति क्या होगी। तो मजाक में भी नित्यानंद प्रभु फिर कहने लगे, अरे मायावादी के पास में जो जाके निर्विशेषवाद निर्गुण ये सब प्रचार करने वाले व्यक्ति के पास में बैठ के हमारे चेतना में क्या नुकसान हो जाएगा वो भगवान ही जाने, हमारा भाग्य ऐसे है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें बैठना पड़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्ति सब सुन के हंस रहे थे। तो इस तरह से प्रसाद का सेवन सबने कर लिया और फिर सब अपने अपने स्थान में चले गए, क्योंकि अगले दिन नेत्रोत्सव होना था, उसकी चर्चा संक्षेप में कल करेंगे। इस तरह से गुंडीचा मंदिर का मार्जन बहुत अच्छी तरह से महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में किया। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय, श्री गुंडीचा मार्जन की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न आदि है?
मंदिर में आने से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं महाराज, उसके लिए क्या प्रायश्चित?
मंदिर में अंदर रहते समय बहुत अपराध हो जाते हैं, पहली बात तो ये है कि हमें जानना चाहिए कि कौन से अपराध हैं। जब हम जान जाएंगे कि ये अपराध है तो ध्यान से उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये पहला कदम। कई बार अपराध इसलिए भी हो जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के सामने मोबाइल फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, को पता नहीं, वो बोलना चाहिए ऐसे ठीक नहीं है। या कोई पैर फैला के बैठे हुए हैं, हो सकता है उनको पता नहीं। खास करके विदेश में ऐसे देखा जाता है, भारत में भी ऐसे काफी होता है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से चीजें वर्जित हैं मंदिर में और उनको नहीं करना चाहिए। हम सावधान रहेंगे और जानकार हो जाएंगे तो फिर हमसे अपराध नहीं होने चाहिए। और फिर भी जाने अनजाने में हो भी गए तो हरि नाम से ये सब शुद्ध हो जाएंगे। सेवा अपराध इनको कहते हैं। सेवा अपराध हरि नाम से दूर हो जाते हैं। परंतु यदि हम अपराध इस भावना से करेंगे कि हम सेवा अपराध करेंगे, बाद में नाम करना ही है ना, नाम लेना है, तो नाम से ये सेवा अपराध से मुक्त हो जाएंगे, तब वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वो सातवें नंबर, सातवां नाम अपराध है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें बच के रहना चाहिए सेवा अपराधों से, ठीक है? तो ये स्वच्छता की बात जो कही है, आगे बढ़ के बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मंदिरों को हमें बहुत साफ रखना चाहिए। हम देखते हैं कि भारत में ये समस्या है कि यहाँ वहां हम लोग बहुत गंदगी फेंकते हैं। कहीं सड़क में कुछ खा रहे कागज है, सड़क में से फेंक के चले गए। हमारी चेतना, हमारी भावना कैसी है? घर को साफ रखेंगे लेकिन सारा कचरा जाके घर के बाहर रख देंगे, सड़क को गंदा कर देंगे, अपना घर साफ रखना है। लेकिन नहीं, ये स्वच्छता की भावना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अर्थात स्वच्छता भगवत्ता से के निकट है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें स्वच्छ भी होना चाहिए। अपने शरीर को, अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने कमरों को, घर को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए, सड़कों को, स्थानों को, सब जगह को स्वच्छ रखना चाहिए, मंदिरों को साफ रखना चाहिए। कम से कम सड़क में, कम से कम मंदिरों को तो साफ रखें। परंतु हम देखते हैं कि मंदिरों में कितनी गंदगी होती है। बाहर भारत में आप जाइए, लोग यहाँ वहां सब कुछ फेंकते हैं। तो भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ये सब संस्कार उनको नहीं दिए जाते हैं बचपन से, ये शिक्षण नहीं दिया जाता है, ना तो घरों में, ना तो पाठशालाओं में, ना समाज में। और ऐसे प्रचारकों की भी कमी है जो ये ज्ञान सबको दे सके। तो मंदिरों को भी साफ बहुत रखना चाहिए, हमारे तीर्थ स्थानों को साफ रखना चाहिए। आप किसी भी धाम में जाइए, तीर्थ स्थान में जाइए, चाहे वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, लोग जो तीर्थयात्री आते हैं, कितनी गंदगी यहाँ वहां सड़क धाम में भी फेंक के चले जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। आप इस बात को मानते हैं कि कम से कम हमारे पवित्र स्थानों को तो पवित्र रखना चाहिए। हम आते हैं दर्शन के नाम पर लेकिन फिर कचरा वचरा फेंक के चले जाते हैं, तो हमें तो कम से कम ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जब हम लोग ऐसे तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी 50, कभी 100, कभी 200, या तो ऐसे भक्तों के दल में जाते हैं, तो कथा होती है, दर्शन होते हैं, कीर्तन होता है, प्रसाद आदि सब कुछ होता है। लेकिन हमें हर यात्रा में थोड़ा समय तो कम से कम धाम को साफ करने के लिए रखना चाहिए। आपको याद रहेगी ये बात। आप जहां भी जाएंगे, किसी भी यात्रा में जाएंगे, किसी तीर्थ स्थान में, धाम में, थोड़ा समय अवश्य रखिए धाम को स्वच्छ करने के लिए। हम जब गए थे हम्पी एक बार, तो आंजनेय पर्वत में गए थे जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वहां पहाड़ के ऊपर भी लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई हुई थी, वो पान मसाला के वो सब पैकेट और कागज और ये वो इतने सारे चीजें, सिगरेट के पैकेट, बीड़ी के पैकेट, तो सारे भक्तों ने मिलकर सारा साफ कर दिया ऊपर का। लेकिन और कोई स्थान डालने के लिए नहीं वहां पे, तो मैं कर शहर में वापस ले जाऊ, शहर में तो कम से कम थोड़ी व्यवस्था तो रहती है कुछ। तो देखिए लोग इतना ऊपर चढ़ के जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इनको श्रद्धा है, नहीं तो इतना ऊपर चढ़ के, हनुमान मंदिर तो बहुत ऊंचा है, कितने सीढ़ियां हैं मुझे याद नहीं है, बहुत सीढ़ियां हैं, काफी समय लगता है ऊपर जाने के लिए, कष्ट लेना पड़ता है तपस्या। तो ये तो सब श्रद्धालु लोग हैं, तो श्रद्धालु लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके पान मसाला ये लोग सब फेंक के चले जाते हैं, इसका मतलब है उनको शिक्षण नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। और हम लोग भी कृष्ण भक्त है, हम लोग भी ऐसे यदि करेंगे तो फिर अच्छा नहीं है। तो हमें न केवल गंदगी नहीं फैलानी है, लेकिन जहां भी जाएंगे, धाम में, तीर्थ स्थान में, मंदिर में, बाहर भी, कहीं भी, हमें स्वच्छ रखना है स्थान को, और धाम में जाके धाम की सफाई भी हमें करनी चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। फिर वही होगा जो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को लगा कि मंदिर साफ करने के बाद में कैसे लगा कि हमारे हृदय भी ऐसे ही साफ हो गया है। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, कभी कभी हम इच्छा नहीं रहती किसी के बारे में अपराध सुनना है वैष्णव का, फिर भी सुनना पड़ता है महाराज, तो उस टाइम हमको डायरेक्टली उनको बोल के हर्ट भी नहीं कर सकते, तो इस टाइम हमको कैसे करना है, क्योंकि अपराध तो होते रहते हैं।
तो बड़े नम्रता से आप उनको बोल सकते हैं कि ये बातें मत कीजिए, बस बोल सकते हैं ऐसे, फिर मामला खत्म। यदि हम सुनते बैठेंगे तो फिर हम भी भागीदार हो जाएंगे। ठीक है।
Sometimes, as you mentioned in the lecture, that the Prabhupada's disciples, even though they were born in the West, they could give up their simple. As you had mentioned in the lecture, that the Prabhupada's disciples, even though they were born in the West, they could give up the simple their habits, and they followed the four regulative principles. Even though they were very new and they were not much conversant with the philosophy. Similarly, in our case, how being the neophyte stage, we can give up our previous conditionings and become more fixed up.
प्रश्न ये है कि जब प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका यूरोप गए थे, तो वहां की जो युवा पीढ़ी थी, उनके ऐसे कोई संस्कार नहीं थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग के प्रभुपाद जी का और श्री कृष्ण का शरण लिया, सारे नियमों का पालन करने लगे। तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हमारे भक्ति में आने से पहले बहुत कुछ कर रहे थे, तो कैसे अभी बंद करें उन चीजों को? तो जैसे उन्होंने किया वैसे भी हम कर सकते हैं। भक्तों के बीच में आके हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए नियमित रूप से, जप अच्छी तरह से करना चाहिए, भक्तों के बीच में आके संकीर्तन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए बड़ी नम्रता से। इस तरह से सारे ये अनर्थ जो है वो निकल जाएंगे। और जब मंदिर की सफाई होती है, तो आके गुंडीचा मंदिर के मार्जन की कथा के को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यहाँ करते हो कि नहीं? महाक्लिनिक कभी करते हो मंदिर की सफाई? तो जब मंदिर की सफाई होती है, महामार्जन, तो आप सब आना यहाँ अच्छी तरह से सफाई करने के लिए और भक्त साधन भक्ति के अंगों का पालन करने से फिर सारे अनर्थ निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रश्न? अच्छा ठीक।
जिस तरह बताया कि जब जैसे कि हम हमारे अनर्थ चले जाएंगे, जब हम भक्तों के संग लेके नम्र भाव से सेवा करेंगे, तो लेकिन ये भी बताया गया कि अनर्थ तब तक रहेंगे या जब जिस जब तक हमें अपने गुरु से जो एक होता है, जब तक वो प्रेम नहीं जागता, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक जो हमारे गुरु जो उपदेश दिए हैं उनको पालन करने का, कि तब तक
तो जो हमें उपदेश मिले हैं उनका पालन करना चाहिए। सरल बात है, यदि हम गंभीर हैं भक्ति में तो नियमों का पालन करना चाहिए, फिर सारे अच्छे फल मिल जाएंगे। वो हमारे ऊपर है, नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो नियमों का पालन करना ये आसान कैसे हो जाता है? जब हम ऐसे लोगों के संग में ज्यादा रहते हैं जो इन नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक और लाभदायक होता है। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल रथ यात्रा का महोत्सव है, तो आप सब तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से आपकी हो रही है, तो अभी यहाँ प्रवचन समाप्त करते हैं और कल आपसे मिलेंगे रथ यात्रा के समय। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं परम पूज्य भक्त सांबुद स्वामी महाराज को। खासकर आज का जो विषय था गुंडीचा महाजन, ये महाराज का बड़ा प्रिय विषय है। और जैसे कि हम हमेशा महाराज से यह सुनते आते हैं कि हृदय की शुद्धता और बाहर के वातावरण की शुद्धता का जो दोनों के बीच में एक तालमेल रहता है और संबंध रहता है, अंदर के हृदय की अशुद्धता यही बाहर की अशुद्धता का मेन कारण है। हमारा जैसे बोलते हैं इनका हमेशा एक मूड है, जैसे बोले कि वो जब भी आप धाम यात्रा करेंगे तो अंतिम दिन थोड़ा तो समय निकाल के हमें उस धाम की स्वच्छता करनी चाहिए। हाल ही में हमें यह अनुभव आया साउथ इंडिया का, जो हमारा दक्षिण भारत का यात्रा हुआ, तभी भी महाराज ने इस चर्चा के ऊपर, इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया था और आज भी उन्होंने उसका उल्लेख किया। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज को। और वैसे तो महाराज का इंट्रोडक्शन जो है वो बिगिनिंग में देना चाहिए था, मगर बहुत सारे जो भक्त नहीं तो मगर बहुत से भक्त उपस्थित भी नहीं थे वैसे। तो महाराज ने बिगिनिंग शुरुआत में ही बोला था कि ये भक्त कहाँ पर है, क्या भक्त बिजी है सेवा में या क्या है। तो ये सबसे विनती करते हैं, सब भक्तों से विनती करते हैं, यहाँ पे जो समय पे आए उनको भी बताते कि वो समय पे आए, और जो जो भक्त समय पे नहीं थे वो भी अच्छी आदतें लगाएं हमेशा, कि जो प्रवचन का जो समय दिया रहता है, हम खासकर एक विनय प्रभु जो है हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज है, आपको हमेशा मैसेज भेजते रहते हैं कि इसी इसी समय पर कथा का प्रारंभ होगा। तो हम आपको विनती करते हैं कि समय की जो पाबंदी है उसके ध्यान में रखें और सही समय पे कक्षा यहाँ पे प्रारंभ तो होगी, मगर आप होंगे तो आज का क्या समय था?
6:30
6:30 था। पर तो हम बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, लगभग 50% भी 6:30 6:30 बजे नहीं थे। तो अगर रेगुलरली हम जो भी कक्षा देते हैं तब भी यह अवस्था होती है, बारंबार हम कहते रहते हैं, मगर खासकर जब हमारे वरिष्ठ भक्त यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट ये जो वैष्णव प्रणाली है कि हम उनसे पहले क्लास में उपस्थित रहे। अगर 6:30 बजे है तो हम 5 मिनट पहले आके यहाँ पर बैठा है, यह एटिकेट है, यह वैष्णव प्रणाली है। तो हम सबको फिर से विनती करते हैं, अभी कल का क्लास कितने बजे है सुबह का?
8:30
8:30 बजे है। तो सब भक्तों को विनती करते हैं कि आप 8:30 से पहले आए, वैसे मंगल आरती को अभी आ सकते हैं, हमारे साथ जपा भी कर सकते हैं। तो जिनको हो सकता है वो मंगल आरती और जप में भी आए, और खास कर करके 8:30 बजे जो प्रवचन है उससे पहले आए, ये हम सब भक्तों को नम्र विनती करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम आइए परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को धन्यवाद देते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलते
हैं।
एक संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कल का जो स्केड्यूल है। तो सुबह यहाँ पे 4:30 बजे हमारा जब प्रारंभ होता है, मंगल आरती हम खासकर 7:30 बजे करते हैं, जो ताकि बहुत सारे भक्त आए। 8:30 बजे ठीक यहाँ पर सुबह का भागवतम पठन, जिसका विषय है चैतन्य चरितामृत का ही विषय है कि महाप्रभु ने किस तरह से रथ यात्रा में भाग लिया, जहाँ पे आज कथा का अंत हुआ वहां से कल का कथा का प्रारंभ होगा। और उसके बाद प्रसादम होगा सब भक्तों के लिए, और दिन में बहुत सारे भक्तों के लिए सेवा का आयोजन किया हुआ है, अपने अपने सेवाएं कर सकते हैं। और सभी भक्तों को विनती करते हैं कि 4 बजे खास सभी रथ यात्रा का जो प्रारंभ है, इनॉग्रेशन जो है समारंभ, उसमें भाग ले। 4 बजे कला जो भवन है उसका मंदिर प्रांगण है वहां पर ये प्रारंभ होगा, वहां पे सभी भक्त उपस्थित रहे। जो सेवा में है वो तो शायद नहीं आ पाएंगे, मगर ज्यादा से ज्यादा उस वहां पर उपस्थित होकर रथ यात्रा में भी भाग ले। और शाम को भी 7 बजे से आगे कला भवन वहां पे कार्यक्रम रहेगा शाम को। तो वहां पर भी प्रयास करें कि 8 से 9 बजे तक महाराज जी का प्रवचन रहेगा, उसमें श्रवण में भाग ले। यही फेस्टिवल है हमारे सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब सबके लिए प्रसाद व्यवस्था है, ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहां के प्रसाद हॉल में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी भक्तों को विनती करते हैं कि वहां पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।